आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। साथियों, आज के पॉडकास्ट के अंत में आपको एक रोचक खबर से रूबरू कराएंगे कि जमशेदपुर में एक आम 10,000 रुपये में क्यों बिका। पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के नेताओं संग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक से। इसके बाद बताएंगे आपको कि ताजिकिस्तान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के उनके समकक्ष निकोलाई पात्रुशेव के बीच क्या बात हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति से भी अवगत कराएंगे हम आपको। मेरठ का भी हाल होगा आज के पॉडकास्ट में। मौसम की खबर के अलावा आपको बताएंगे बिहार के मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने दरभंगा ब्लास्ट और उससे पहले हुए बांका और सिवान ब्लास्ट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल चलिए पहली खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहूत सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए चुनाव करा सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार इस साल दिसंबर से अगले साल मार्च 2022 के बीच चुनाव करा सकती है। बता दें कि इसी समयावधि में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सरीखे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं के साथ गुरुवार को अहम बैठक हुई। 3 घंटे से भी ज़्यादा चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल हुए थे। बैठक में मोटे तौर पर इस बात पर सहमति बनी है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया तेज गति से पूरी होनी है ताकि वहां विधानसभा चुनाव कराए जा सकें और एक निर्वाचित सरकार का गठन हो सके जो प्रदेश में विकास को मजबूती दे। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान में SCO सम्मेलन से इतर रूस के अपने समकक्ष निकोलाई पात्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग पर रूस भारत संवाद के लिए योजनाओं पर चर्चा की। रूस की समाचार एजेंसी TASS ने खबर दी कि दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रही स्थिति पर अपने विचार साझा किए। डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों के शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हैं। 2 दिवसीय यह बैठक 23 और 24 जून को हुई। SCO के मौजूदा अध्यक्ष ताजिकिस्तान ने 8 सदस्यीय देशों के समूह के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले खतरनाक रूप से बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 6,000 से 10,000 तक पहुंच गए हैं। 21 जून को पूरे महाराष्ट्र में 6,270 कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। 22 जून को ये बढ़कर 8,470 हो गए। इसके बाद 23 जून को पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, जिसके चलते बाजार फिर से खुल चुके हैं। कोरोना गाइडलाइन से बेपरवाह कई लोग अपने घर से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। इन बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में 41 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की आहट की आशंका को लेकर जांच शुरू हो गई है। एक गांव से 4 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। अगले कुछ दिनों में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी कि कहीं ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हैं या नहीं। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि एहतियातन यह कदम उठाया गया है। मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी का कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज की लैब को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश का कहना है कि मेरठ के अंदर डेल्टा वेरिएंट की कोई आशंका नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट के केसेस मिले हैं, इसलिए एहतियात बरता जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि मेरठ के खरखौदा इलाके के एक गांव में 4 लोगों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लिए गए हैं और उन्हें दिल्ली भेजा गया है। बताया गया है कि ये चारों आशा वर्कर हैं। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों के अलावा हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए जुलाई तक इंतज़ार करना होगा। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला और अमृतसर से होकर गुजरती है। मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियां और पूर्वानुमानों से संकेत मिलते हैं कि अगले सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष हिस्सों में बढ़ने की संभावना नहीं है। बयान के मुताबिक 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। IMD ने यह भी कहा कि भारत में अब तक मानसून में 28% अधिक बारिश हुई है। 23 जून तक 145.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 114.2 मिलीमीटर है। बारिश नहीं होने की वजह से उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर के BJP सांसद अजय निषाद ने दरभंगा ब्लास्ट और उससे पहले हुए बांका और सीवान के ब्लास्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। BJP सांसद ने मदरसे और उसको संचालित करने वाले धर्मगुरुओं को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी मदरसे को संचालित करने वाले धर्मगुरु हैं, उनका पहला लक्ष्य रहता है कि जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनके प्रभाव में रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे। उसका इस्तेमाल ये लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत एक्टिविटी में गुमराह कर लगा देते हैं और उसका शोषण भी करते हैं। आतंकवादी होते हैं वो गोली खाकर मर जाते हैं या जेल में सड़ जाते हैं, उनको कोई देखने वाला भी नहीं रहता। BJP सांसद ने कहा कि इन सारी समस्याओं के जड़ ये ही धर्मगुरु मौलवी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा मीनापुर के पानापुर OP के नडियार गांव के पास NH 28 पर हुआ। घायल हुए सभी लोगों को SKMCH भेजा गया है। मृतकों की डेड बॉडी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। ASP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गायघाट से मोतीपुर क्षेत्र में बस से बारात आई थी और लौटते वक्त एक होटल पर रुकी हुई थी। बस के पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने खड़े लोगों को कुचलते हुए बस में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गए हैं। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जमशेदपुर में एक आम 10,000 रुपये में बिका। आपको बता दें कि यह आम की खासियत नहीं थी कि वह 10,000 में बिका, बल्कि यह खासियत थी 8 साल की मासूम तुलसी की। दरअसल बीते रविवार को जब झारखंड में लॉकडाउन था और दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी, तो ऐसे में किनन स्टेडियम के पास तुलसी नाम की यह मासूम बच्ची आम बेच रही थी। इस दौरान न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जब उससे पूछा कि लॉकडाउन के दौरान आम क्यों बेच रही हो, तो उसने बताया कि उसे पढ़ाई करनी है और पैसे नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए उसे मोबाइल खरीदना है। इसके अलावा उसने अपने घर की माली हालत की भी जानकारी दी, जो खस्ता हाल है। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद वैल्यूएबल एडुटेनमेंट कंपनी के वाइस चेयरमैन नरेंद्र हेटे और उनके बेटे अमैया हेटे मदद के लिए आगे आए। अमैया हेटे ने तुलसी से 12 आम खरीदे और एक आम की कीमत 10,000 रुपये लगाई। इस हिसाब से उन्होंने तुलसी को 1,20,000 रुपये भुगतान किए। इसके अलावा उन्होंने तुलसी को एक मोबाइल फ़ोन दिया और इसमें 2 साल का इंटरनेट पैक डलवाया। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।